بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتا، آج بھی اپنے کارکرم کا آرمبھ ہم قرآن مجید کی پوتر آیتوں کی تلاوت اور ان کے انواد سے کریں گے۔ آج آپ سورہ آلہ کی آیت کرمانک 1 سے 17 تک کی تلاوت اور اس کا انواد سنیں گے۔ قاری ہیں سورگی محمد صدیق منشاوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدا والذی اخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير صدق اللہ العظیم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے، ہی پیغمبر اپنے سروچ پالنہار کے نام کا گنگان کیجئے، جس نے پیدا کیا پھر ٹھیک ٹھاک کیا، جس نے بھاگیہ نردھارت کیا پھر مارگ دکھایا، جس نے ونسپتی اگائی پھر اسے سوکھا اور کالا بنا دیا، پھر ہم آپ کو شیگر ہی اس پرکار قرآن پڑھائیں گے کہ پھر آپ بھولیں گے نہیں، سوائے یہ کہ ایشور ہی یہ چاہے کہ نسندیہ وہ ہر سپشٹ اور چھپی بات کو جانتا ہے، اور ہم آپ کو ہر بھلے کار کے لیے تیار کر دیں گے، اتہ نصیحت کیجئے، یدی نصیحت لاپ پرد ہو، اور شیگر ہی ایشور سے ڈرنے والا ویکتی نصیحت حاصل کر لے گا، کنتو اتین دربھاگ والا اس سے کترائے گا وہی جو بڑی آگ میں گر پڑے گا، پھر وہ اس میں نہ تو مرے گا نہ ہی جیے گا۔ نشچت روپ سے جس نے اپنے آپ کو پوتر بنا لیا وہ سفل ہو گیا، اور جس نے اپنے پالنہار کے نام کا اسمرن کیا پھر نماز ادا کی۔ نہیں بلکہ تم تو سانسارک جیون کو پراتھمکتا دیتے ہو، جبکہ پرلوک ادھک اتم اور شیش رہنے والا ہے۔
دوستوں آپ سن رہے ہیں ریڈیو تہران کی ہندی سیوا۔ ہمارے پرسارن کو آپ شارٹ ویو میں 25 میٹر بینڈ برابر 11,860 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ دوستوں پتر ویوہار کے لیے ہمارا ای میل آئی ڈی ہے hindi@ws.irib.ir۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے parstoday.com/hi۔ دوستو آج رویوار ہے، شہریور ماہ کی 13، سفر کی 7 اور ستمبر کی 4 تاریخ۔ ہمارے آج کے کارکرموں کی روپ ریکھا کچھ اس پرکار ہے۔ سب سے پہلے آپ وشو سماچار سنیں گے، اس کے اپرانت کارکرم انمول باتیں پرستت کیا جائے گا۔ انمول باتیں کے بعد آپ سنیں گے راجنیتک چرچا کا دینک کارکرم، اس کے اپرانت ہم آپ کو سنائیں گے کارکرم قرآن ایشوریہ چمتکار، اور سبا کا انتم کارکرم ہوگا آج کل۔ تو دوستو یہ تو تھی ہمارے آج کے کارکرموں کی روپ ریکھا، اور ابھی آپ تھوڑی دیر میں ریڈیو تہران سے وشو سماچار سنیں گے۔ اب آپ ریڈیو تہران سے وشو سماچار سنیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آج کے مکھیہ سماچاروں کا سارانش۔ اسرائیل نے ایران کی تسنیم نیوز ایجنسی کے پترکار کو گرفتار کر لیا۔ سیریا میں امریکی چھاونی پر کئی راکٹ حملے، سیرا پر ہوئے حملے میں کئی ہتاہت۔ بحرین میں اسرائیل کی سازش، زمینوں اور گھروں کو خریدا جا رہا ہے۔ رام لیلا میدان میں کیندر پر برسا وپکش، کیندر سے کیے چپ تھے سوال۔
زین شاسن کا استتو کی غیر قانونی ہے، اور آئے دن وہ اس کا ثبوت بھی پیش کرتا رہتا ہے۔ الجزیرہ ٹی وی چینل کی پترکار شیرین ابو عاقلہ کو گولی مار کر موت کی نیند سلا دینے والے زین سینکوں نے ایران کی تسنیم نیوز ایجنسی کے پترکار منتصر نصار کو گرفتار کر لیا ہے۔ زین سینکوں نے شکروار کی شام الخلیل نگر میں فلسطینیوں کے خلاف کاروائی کے دوران تسنیم نیوز کے پترکار کو گرفتار کر لیا۔ پترکار نے ایک ویڈیو جاری کر کے ٹیم سمیت اپنی گرفتاری کی پوری کہانی بیان کی ہے۔
عراق کے صدر دھڑے کے پرمکھ مقتدہ صدر میں 40 ملین مارچ کے اوسر پر عراق کی یاترا کرنے والے تیرتھ یاتریوں کی سرکشا اور ان کی سرکشا کو سنشچت کرنے پر بل دیا۔ صدر دھڑے کے پرمکھ مقتدہ صدر نے 40 حسینی کے سمن میں ایک بیان جاری کیا، جس میں انہوں نے عراق جانے والے تیرتھ یاتریوں کا سواگت کرتے ہوئے عراقی جنتا سے اپیل کی ہے کہ تیرتھ یاتریوں کی جان کی رکشا کے لیے پریاسرت رہیں اور آپس میں ہر پرکار کے ٹکراؤ سے بچیں۔ مقتدہ صدر نے میڈیکل پروٹوکول اور صاف صفائی کا دھیان رکھے جانے پر بل دیتے ہوئے کربلا کے سمبندت ادھیکاریوں سے کہا کہ وہ تیرتھ یاتریوں کی سرکشا کی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لیں اور سرکشا بلوں کی مدد سے چیک پوسٹوں کی مانیٹرنگ پر دھیان دیں۔
سیریا کے علاقے پوروی دیر زور میں استھت ایک امریکی سینے چھاونی پر راکٹ حملہ ہو گیا۔ سیریا کے ٹی وی چینل نے اپنی بریکنگ نیوز میں یہ خبر دی کہ پوروی دیر زور میں علومر آئل فیلڈ میں جسے امریکہ نے اپنی چھاونی بنا لیا ہے، کئی دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ دھماکوں کے بعد امریکی سینے چھاونی کے بھیتر سے آگ لپٹتی ہوئی نظر آئی۔ امریکی میڈیا نے بھی رپورٹ دی ہے کہ علومر آئل فیلڈ سے کئی دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ اب اس حملے کے بارے میں پورا بیورا حاصل نہیں ہو سکا۔
रशिया टुडे के अनुसार सीरिया में रूस के सुलह केंद्र के उप प्रमुख ओलेग एग्रोफ ने कहा है कि ये क्षमा कीजिएगा आतंकियों के रॉकेट हमले में सीरिया के 3 सैनिक हताहत हो गए। रशिया टुडे के अनुसार सीरिया में रूस के सुलह केंद्र के उप प्रमुख ओलेग एग्रोफ ने कहा है कि यह हमला इदलिब प्रांत में स्थित देर सुनबुल क्षेत्र में हुआ जहां सीरियाई सेना का एक केंद्र है। इस घटना में एक सैनिक घायल भी हुआ। रूस के इस अधिकारी ने बताया कि पिछले दिनों नुसरा फ्रंट के आतंकियों ने इदलिब के बफर जोन इलाके को भारी गोलीबारी का निशाना बनाया है। इदलिब का बफर जोन सीरिया के पश्चिमोत्तरी क्षेत्रों जिनमें हलब, हमा और लाजिकिया प्रांत शामिल हैं, जहां नुसरा फ्रंट और तुर्की के समर्थक लड़ाके हैं, फैला हुआ है।
इसराइली जेल में कैद फिलिस्तीनी कैदियों के खिलाफ इसराइल के अपराधों का क्रम जारी है और फिलिस्तीन के जिहाद इस्लामी संगठन ने कहा है कि फिलिस्तीनी कैदी की शहादत इसका एक सबूत है। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 41 वर्षीय फिलिस्तीनी अबू महमद बीमार थे और उन्हें इसराइल ने जेल में डाल रखा था। वो पिछले दिनों उपचार न होने और चिकित्सकों की लापरवाही की वजह से दम तोड़ गए। इस कैदी की शहादत पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए फिलिस्तीन के जिहाद इस्लामी संगठन ने कहा कि अबू महमद की शहादत ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि ज़ायनी शासन फिलिस्तीनी कैदियों के साथ बुरा बर्ताव करता है और उनकी धीरे धीरे मौत की योजना पर काम कर रहा है।
इसराइल बहरीन की राजधानी मनामा के 40% पुराने इलाकों को हथियार कर वहाँ एक इसराइली इलाका बनाने के लिए सक्रिय हो गया है। अल आलम टीवी चैनल की रिपोर्ट के अनुसार बहरीन के प्रसिद्ध धर्मगुरु और अल इस्लामी आंदोलन के नेता सैयद मुर्तजा सिंधी ने कहा है कि बहरीनियों की जमीनों को खरीदने के लिए इसराइली नागरिक राजधानी मनामा में सक्रिय हो गए हैं और उन्होंने भारी कीमत अदा करके बहरीनियों के घरों और उनकी जमीनों को हथियाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि इसराइली बहरीनियों की जमीन खरीदकर वहां अपना एक विशेष इलाका बनाने की योजना बना रहे हैं और इसराइली चाहते हैं कि मनामा में इसराइल के दूतावास के निकट की जमीनों को खरीदा जाए। इससे पहले बहरीन के धार्मिक नेता आयतुल्ला शेख इसा कासिम ने बहरीनी जनता को इसराइलियों के हाथों जमीनों और घरों को बेचने पर सचेत किया था और इसे धर्म, इतिहास और देश को बेचने के समान बताया था।
ये समाचार रेडियो तेहरान से प्रसारित किए जा रहे हैं। तुर्क राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने अपने देश के इस करीब स्थित द्वीपों को हथियारों से लैस किए जाने के मुद्दे पर यूनान को चेतावनी देते हुए कहा कि इतिहास पर नजर डालो, इतिहास की ओर लौटो, अगर अब इससे आगे बढ़ने की कोशिश की तो बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और हम किसी भी रात में अचानक हमला कर सकते हैं। रजब तैयब एर्दोगान ने शनिवार को चेतावनी देते हुए अपने देश के करीब स्थित द्वीपों को हथियारों की सप्लाई से बाज आ जाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि यूनान भारी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाए।
दिल्ली के रामलीला मैदान में महंगाई, बेरोजगारी और आवश्यक वस्तुओं पर GST में वृद्धि को लेकर आज कांग्रेस की रैली हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी के कई अन्य नेता महंगाई पर हल्ला बोल रैली को संबोधित किया। इसमें देश के अन्य हिस्सों के अलावा दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पार्टी कार्यकर्ता भी शामिल हुए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि देश में कुछ लोग जानबूझकर नफरत एवं डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस की महंगाई पर हल्ला बोल रैली में कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार में भविष्य का डर, महंगाई का डर और बेरोजगारी का डर बढ़ता जा रहा है। ये रैली 7 सितंबर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक विपक्षी पार्टी की 3,500 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा से पहले हुई है। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी का अब तक का सबसे बड़ा जनसंपर्क था।
भारत में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के सांसदों और मंत्रियों का दबंग रवैया मीडिया में चर्चा का केंद्र बना हुआ है और कहा जा रहा है कि ये नेता अधिकारियों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां एक तरफ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को अपनी तेलंगाना यात्रा के दौरान कमारा रेड्डी के जिलाधिकारी को सार्वजनिक तौर पर फटकार लगाई थी, वहीं दूसरी ओर झारखंड के देवघर में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी ने दबाव डालकर एयरपोर्ट का कानून तोड़ा। निर्मला सीतारमण ने उचित मूल्य की दुकान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर न नजर आने पर जिलाधिकारी से सवाल किया था।
अमरीका के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल सोमवार को भारत का दौरा करेगा। यह प्रतिनिधिमंडल द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और स्वतंत्र एवं खुले, लचीले और सुरक्षित हिंद प्रशांत क्षेत्र को समर्थन देने के लिए भारत आएगा। विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी। दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के सहायक विदेश मंत्री के नेतृत्व में अमरीकी प्रतिनिधिमंडल 5 से 8 सितंबर तक भारत का दौरा करेगा।
मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत नियंत्रित कश्मीर में पिछले 3 साल से जारी मानवाधिकार के उल्लंघनों पर गहरी चिंता जताई है। संस्था ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने के बाद से 3 साल में मानवाधिकार संस्था ने देख लिया है कि हालिया वर्षों में सिविल सोसाइटी के लोग, पत्रकार, वकील और इलाके पर मानवाधिकारकर्ता लगातार पूछगछ, यात्रियों पर पाबंदी और मीडिया के लिए कठोर और दंडात्मक पॉलिसियों का सामना कर रहे हैं। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से अंतर्राष्ट्रीय समाचार समाप्त हुए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। अनमोल बातें। दोस्तों, कार्यक्रम अनमोल बातें लेकर आपकी सेवा में उपस्थित है। आज हम सुप्रीम लीडर की नज़र में शिष्टाचार और बिना राजनीति तथा हज़रत अली अलैहिस्सलाम की नज़र में ऐसी हुकूमत के मूल्यहीन होने के विषय पर चर्चा करेंगे। कायम रिज़वी का सलाम स्वीकार कीजिए। इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामेनेई हज़रत अली अलैहिस्सलाम की राजनीति को आध्यात्म और नैतिकता की छात्र छाया में बताते हैं। वे नैतिकता और शिष्टाचार के बिना राजनीति को आपदा समान कहते हैं। सुप्रीम लीडर का कहना है कि इस बिंदु पर हमें ध्यान देना चाहिए और इसको दृष्टिगत रखना चाहिए कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम का राजनैतिक बर्ताव उनके नैतिक और आध्यात्मिक बर्ताव से अलग नहीं था। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की राजनीति भी आध्यात्म से पूरी तरह से मिश्रित थी। वो शिष्टाचार से मिली हुई थी। ये मूल रूप से हज़रत अली अलैहिस्सलाम के आध्यात्म से पैदा हुई और वही उनका शिष्टाचार भी था। इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामेनेई ये कहते हैं कि राजनीति अगर नैतिकता से निकलती है तो वो आध्यात्म से ओतप्रोत होती है। ये उन लोगों के लिए परिपूर्णता का साधन बनती है। लेकिन अगर राजनीति नैतिकता से अलग हो जाए, आध्यात्म से अलग हो जाए, तो उस समय राजनीति सत्ता हासिल करने का एक माध्यम बन जाती है। ये किसी भी कीमत पर पैसा कमाने का जरिया और दुनिया में अपना कदम या अपना काम बढ़ाने के लिए होती है। सुप्रीम लीडर कहते हैं कि इसी सियासत को आफत और आपदा कहा जाता है। ये खुद राजनेता और सियासत का खेल खेलने वालों के लिए आफत और मुसीबत है। उन लोगों के लिए भी आफत है जिनसे राजनीति की जाती है और जिनको इस सियासत का शिकार बनाया जाता है। इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता हज़रत अली अलैहिस्सलाम की नज़र में हुकूमत के मूल्यहीन होने की ओर इशारा करते हुए सत्ता की बागडोर संभालने को इस बारे में जनता का बारंबार का आह्वान करार देते हैं। सुप्रीम लीडर कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इस सरकार को, जिसमें 3 बड़ी जंगें हुई और इन जंगों में 1000 लोग मारे गए,
آپ نہج البلاغہ میں دیکھ سکتے ہیں. اس میں ورنت باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے انیک طرح سے سرکار اور ستہ کو تچھ قرار دیا ہے. اسلامی کرانتی کے ورشٹ نیتا کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام ابن عباس کو سمبودھت کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں، ستہ اور سرکار کو اپنے پھٹے ہوئے جوتوں سے بھی میں گیا گزرا سمجھتا ہوں. حضرت علی علیہ السلام اسی ستہ کے بارے میں ایک انیہ جگہ پر فرماتے ہیں کہ تمہاری یہ ستہ میری نظر میں بکری کی چھینک سے نکلنے والے پانی سے بھی گئی گزری ہے. سپریم لیڈر کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ یہ ستہ، یہ سرکار، یہ سیاحسن، یہ سب کچھ بہت ہی مولیہین اور تچھ ہے. اپنے بھاشن کے ایک انیہ بھاگ میں آپ فرماتے ہیں کہ وہ ترک پیش کرتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ آئے اور بہت زیادہ آہوان کر رہے تھے، اپنی مدد بھی انہوں نے پیش کی تو میں نے ستہ قبول کر لی. اس کے بعد وہ آگے دلیل پیش کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ایشور نے دھرم گروؤں اور بدھی جیویوں کو ذمہ داری دی ہے کہ وہ اتیاچاروں اور مظلوموں کی بھوک اور ان کی پریشانی پر صبر نہ کریں، برداشت نہ کریں. یہی وہ چیزیں ہیں جو حضرت علی کو ستہ کی باگڈور قبول کرنے کی اور لے گئیں، ورنہ امیر المومنین کے لیے ستہ کی کوئی بھی حیثیت نہیں تھی. تو دوستو، اسی کے ساتھ کارکرم یہیں پر سماپت ہوتا ہے.
یہ تہران ہے اسلامی گنتانت ایران کی آواز.
راجنیتک چرچا.
دوستو، راجنیتک چرچا کا دینک کارکرم لے کر حاضر ہوں. قائم رضوی کا سلام سویکار کیجیے. جموں میں آزاد کی ریلی، یوکرین یدھ سے جرمنی پربھاوت اور وشو اہل بیت پریشد کا وارشک سمیلن. دوستو، ان وشیوں کو ہم کارکرم میں آج شامل کریں گے. دوستو، اس سمے ایران میں وشو اہل بیت پریشد کا ساتواں سمیلن چل رہا ہے. اس سمیلن میں بھاگ لینے کے لیے دنیا بھر کے دھرم گرو، ودوان، بدھی جیوی اور سنچار مادھیموں سے جڑے ہوئے لوگ راجدھانی تہران میں اکترت ہیں. پارس ٹوڈے ہندی کے ورشٹ سنواددتا رویش زیدی نے اس سمیلن میں بھاگ لینے آئے یونان کے رہنے والے ورشٹ پترکار اشیر حیدر رضوی سے خاص بات چیت کی ہے. تو آئیے سنتے ہیں اشیر حیدر رضوی سے کی گئی یہ بات چیت.
دوستو، اس وقت ہم تہران کے آزادی ہوٹل میں ہیں اور وش اہل بیت پریشد کی کانفرنس میں بھاگ لینے کے لیے یونان گریس سے آئے ہوئے ایک مہمان ہیں ہمارے ساتھ، جو یونان میں جو ہے کافی سکریہ ہیں، خاص کر پترکارتا لائن میں. تو ہم ان سے بات کرتے ہیں، جناب اشیر حیدر رضوی صاحب سے. تو اشیر صاحب، یہ بتائیے کہ آپ یہاں پر جو آئے ہوئے ہیں اس کانفرنس میں، تو اس کانفرنس کا ادیش کیا ہے، میں اصل مقصد کیا ہے؟
دیکھیں، ہم لوگ جو باہر رہنے والے ہیں، جو مغربی ممالک میں دین کا کوئی بھی کام کر رہے ہیں، ہمارے لیے تو یہ ایک نیٹورکنگ کا ایک سنہری موقع ہوتا ہے. یورپ میں رہنے کے باوجود یہاں پہ آپ کو ایک ہی جگہ پہ پورے یورپ کے اور بیونڈ اس کے تمام کانٹیننٹس کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں شیعوں کے، وہ مل جاتے ہیں. آپ ان سے اپنے مسائل شیئر کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ جو ڈیولپمنٹس ہیں اسلام کے حوالے سے جو یورپ میں چل رہی ہیں بڑی تیزی سے چل رہی ہیں وہ شیئر کر رہے ہیں, اور یقیناً یہ ہر لحاظ سے جو ہے ایک ود ان شیعہ کمیونٹی ایک وحدت کا, ایک یونٹی کا ایک بڑا موقع ہوتا ہے کہ چار سال بعد ایک موقع ایسا ہوتا ہے جس میں دنیا بھر سے شیعہ اکابرین جو ہیں اور علماء کرام وہ جمع ہوتے ہیں, اور جو مختلف مسائل ہیں ملت تشیع کے ان پہ بات چیت ہوتی ہے اور ان کے حل کے لیے کوشاں ہو جاتا ہے.
اس وقت جو ہے پوری دنیا میں جو سب سے بڑا کرائسس ہے وہ یہ ہے کہ جو سامراجوادی شکتیاں ہیں وہ مسلمانوں کے درمیان مدبھید پیدا کر رہی ہیں, ان کو آپس میں لڑا رہی ہیں, الگ الگ ان کی پالیسیز ہیں, اس کے اوپر ایران جو ہے وہ ان کا مقابلہ کر رہا ہے فرنٹ لائن میں. تو آپ خود جو ہے ایران کی بھومیکا جو ہے, ایران کا جو رول ہے اس ایک پراکسی وار ہے, میڈیا وار ہے, اور جو مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی ایران کا جو ایران کی کوشش ہے, جو پریاس ہے, اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟
دیکھیں ایران کا تو جو اسلامی جمہوریہ ایران ہے, انقلاب اسلامی کے بعد جو ایران کا قیام جس پیٹرن پہ عمل میں لایا گیا تھا اس کا تو مقصد ہی یہی تھا کہ یہ جو طاغوتی جو طاقتیں ہیں جنہوں نے دنیا میں غدر مچا کے رکھا ہوا ہے ان کو کنفرنٹ کیا جا سکے, اور یہ جو ایک اپنی من مرضی پوری دنیا میں ایک وہ جو سپر پاور کی ایک دھونس جما کے اپنی چلائی جاتی ہے اس کو کنفرنٹ کیا جا سکے. تو یقیناً ایران کی انقلاب اسلامی کے بعد جتنی بھی پالیسیاں ہیں اس میں اسلامی رنگ جو ہے وہ نمایاں ہے, اور یہ ہم سب مسلمانان جہان کے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ دنیا میں ایک ایسا ملک ہے جو ان طاغوتی طاقتوں کے آگے دیوار بنا کھڑا ہے.
یہ تھے اشیر حیدر رضوی. جرمنی میں ایندھن کی قیمت پھر بڑھنے لگی ہے. ایک رپورٹ لے کر اپستھت ہیں احمد عباس.
جرمنی کی ارتھ ویوستھا کی نبض تھم سی گئی ہے. نارد اسٹریم ون جو یورپ کو روزانہ 17 کروڑ گھن میٹر گیس سپلائی کرتی تھی, اب مرمت کے نام پر اس گیس پائپ لائن کی سپلائی پوری طرح سے ٹھپ پڑ گئی ہے اور گیس سپلائی نہیں ہو رہی ہے. جرمنی کی وتیے سنستھائیں جو کورونا کے بعد اب ارتھ ویوستھا کے پٹری پر لوٹنے کا انمان لگا رہی تھیں اب پوری طرح مایوس ہیں. ان سنستھاؤں کا کہنا ہے کہ یوکرین کی جنگ نے جرمنی کی ارتھ ویوستھا کو بھاری نقصان پہنچا دیا ہے. سال کی شروعات میں ہم انمان لگا رہے تھے کہ آرتھک وکاس کی در 4.5% تک پہنچ جائے گی, مگر اب تو لگتا ہے کہ وکاس در شاید 1.5% رہے گی. جرمنی میں ایندھن کی قیمتوں نے پھر رفتار پکڑ لی ہے. اب تک سرکار نے سبسڈی کی مدد سے کسی حد تک قیمتوں کو نیچے رکھا تھا جو اب 2 یورو پرتی لیٹر سے اوپر پہنچ گئی ہیں. ایک ٹیکسی ڈرائیور نے کہا, میں پورا دن کام کرتا ہوں لیکن صرف ایندھن کا خرچ نکلتا ہے.
انفلیشن از دا پرابلم.
جرمنی کا سینٹرل بینک کہتا ہے کہ پت جھڑ کے موسم میں انفلیشن 2 ڈیجٹ میں پہنچنے والا ہے, مگر راج نیتا بار بار یہی رٹ لگائے ہوئے ہیں کہ روس پر پابندیاں ضروری ہیں.
I don't want to say, okay, then we stop the sanctions against Russia.
مگر میڈیا میں آنے والی تازہ سروے رپورٹیں بتاتی ہیں کہ دیش کے مدداتاؤں کی اور سے سرکار کا سمرتھن اپنے نیونتم استر پر پہنچ گیا ہے اور لوگ روس پر لگائی جانے والی پابندیوں کا اب سمرتھن نہیں کرنا چاہتے. جرمنی کی سنسد میں وپکشی دلوں نے سرکار کی نیتیوں پر اپنا ویرود کھل کر جتانا شروع کر دیا ہے.
Dieser Wirtschaftskrieg ist nicht im deutschen Interesse.
وپکش کا کہنا ہے کہ ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ جنگ جرمنی کے ہت میں نہیں ہے. مارچ مہینے میں ہمارے وت منتری نے فقیروں کے انداز میں قطر کا دورہ کیا مگر کوئی سمجھوتا نہیں ہو پایا. جون مہینے میں ودیش منتری نے بھی امریکہ سے گیس حاصل کرنے کی کوشش کی مگر کچھ ہاتھ نہ لگا. کینیڈا کے پردھان منتری اور انیہ ادھیکاری گیس کے لیے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ استھتی جرمنی کی جنتا کے ہت میں نہیں ہے. جرمن سرکار پر آپتی بڑھتی جا رہی ہے, جس کا ایک بیورہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو سسٹم روس کی گیس کی بنیاد پر کھڑا تھا اور یورپ کی ترقی میں مدد کر رہا تھا اب وہ ڈھہ جانے کی کگار پر ہے. برلین سے IRIB کے لیے امیر شجائی کی رپورٹ.
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ اور آپ سن رہے ہیں کاریکرم راجنیتک چرچا۔ سماچاروں سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے گھٹناؤں کی تہ تک پہنچنے اور وبھن آیاموں کو چھونے کی کوشش، کاریکرم راجنیتک چرچا۔
اور شوتاؤ، اب رخ کرتے ہیں ہم بھارت کا۔ غلام نبی آزاد نے آج جموں میں ریلی کی ہے۔ سری نگر سے رپورٹ پیش کر رہے ہیں ہمارے سنواددات سپت محمد حسن۔
آل انڈیا کانگریس سے الگ ہوئے غلام نبی آزاد نے آج جموں کی یاترا کی اور ایک بڑی جن سبھا کو سمبوجھت کیا۔ انہوں نے اس اوسر پر کانگریس پر تابڑ توڑ آکرمن کرتے ہوئے کہا کہ اس دل کو انہوں نے اپنی زندگی دی، پرنتو اس دل نے ان کا اچھی طرح سے خیال نہیں رکھا۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ وہ بہت جلد جموں کشمیر سہت ایک ایسی دل تشکیل دینے جا رہا ہے جس میں تمام ورگوں کو وہ شامل کرے گا اور وہ اپنی راجنیتی کا سفر جاری رکھے گا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ان کے دل کا نام کیا ہوگا اور وہ آنے والے دنوں میں کس طرح کی راجنیتی کرنے جا رہا ہے۔ یہاں یہ بات الیکھنی ہے کہ جموں کشمیر کانگریس میں پہلے ہی ان کے تیاگ پتر دینے کے بعد ہاہاکار مچی ہوئی ہے اور سینکڑوں کی سنکھیا میں کاریکرتا اور نیتا ان کے ساتھ جڑ رہے ہیں۔ اس بیچ جموں کشمیر اپنی پارٹی، جس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اسے نئی دہلی کی ادھیکشتا حاصل ہے، نے آج ایک بڑے ڈیلیگیشن کے ساتھ جموں کشمیر یوٹی کے ایل جی سے ملاقات کی اور باضابطہ طور پر جموں کشمیر کو راجیہ کا درجہ واپس دینے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اسٹیٹ ہوڈ کے لیے فارمل اپیل کی ہے اور مجھے آشا ہے کہ میری اپیل پر عمل ہوگا۔ سری نگر میں ایل جی سے ملاقات کرنے کے بعد پترکاروں کے ساتھ وارتا کرتے ہوئے سید محمد الطاف بخاری نے کہا کہ جموں کشمیر کے ہت میں یہ ہے کہ فوری طور پر اس کا راجیہ کا درجہ واپس کیا جائے، کیونکہ یہاں کے لوگوں کو اب اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہوم منسٹر آف انڈیا نے فلور آف دی ہاؤس یہ وعدہ کیا ہے کہ جب استھتی میں سدھار آئے گا تو جموں کشمیر کو راجیہ کا درجہ واپس کیا جائے گا، اور اب جب نئی دہلی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ جموں کشمیر میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے تو جموں کشمیر کو راجیہ کا درجہ واپس دیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں جو کچھ ملے گا وہ نئی دہلی سے ملے گا، اور میں نئی دہلی سے یہ پرارتھنا کرتا ہوں کہ وہ فوری طور پر ہمارے مطالبات کو سویکار کریں۔ سپت محمد حسن، ریڈیو تہران، سری نگر۔
اسی کے ساتھ راجنیتک چرچا کا دینک کاریکرم یہیں پر سماپت ہوتا ہے۔
دوستو، آپ سن رہے ہیں ریڈیو تہران کی ہندی سیوا۔ ابھی آپ سن رہے تھے کاریکرم راجنیتک چرچا، اور اب پرستوت ہے کاریکرم قرآن ایشوری چمتکار۔
قرآن ایشوریہ چمتکار۔
پریہ شروتاؤں، کاریکرم قرآن ایشوریہ چمتکار کی ایک انیک کڑی لے کر آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں۔ आशा है पसंद करेंगे। आइए पहले सूरह ताहा की 127वीं आयत की तिलावत सुने।
وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى।
और इस प्रकार हम सीमा का उल्लंघन करने और अपने पालनहार की आयतों पर ईमान न लाने वाले को बदला देते हैं, और निश्चय ही प्रलय का दंड तो अत्यंत कठोर और अधिक स्थायी है।
इससे पहले हमने कहा था कि ईश्वरीय परंपरा और कानून के आधार पर जो लोग पैगंबरों व आसमानी किताबों की ओर से मुंह मोड़ लेते हैं, वे संसार में तंगी व कड़ाई भरे जीवन में ग्रस्त होकर अत्यंत दबाव में रहते हैं, और प्रलय में भी ईश्वर के सदा रहने वाले स्वर्ग में उनका कोई ठिकाना नहीं होता।
यह आयत एक बार फिर इस बिंदु पर बल देते हुए कहती है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आस्था व ईमान की दृष्टि से कुफ्र में ग्रस्त हो जाते हैं और कर्म के क्षेत्र में भी संतुलन के सीधे मार्ग से विचलित होकर अतिवाद एवं चरमपंथ की ओर उन्मुख हो जाते हैं। ईश्वर ने इन्हें जो अनुकंपाएं प्रदान की हैं, उन्हें वे गलत मार्ग में प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के लोग भी पिछले गुट की भांति नरक के कड़े दंड में ग्रस्त होंगे और उससे बचने का कोई मार्ग न होगा।
इस आयत से हमने सीखा कि पाप, जो एक प्रकार से अपव्यय और ईश्वरीय अनुकंपाओं का गलत प्रयोग है, ईश्वर पर ईमान से मेल नहीं खाता।
अपने कर्मों के परिणामों का हिसाब किताब करते समय प्रलय में ईश्वर की ओर से दिए जाने वाले पारितोषिक और दंड को संसार के लाभ और हानि से अधिक महत्व देना चाहिए।
آئیے اب سورۃ طٰہٰ کی 128ویں اور 129ویں آیتوں کی تلاوت سنیں۔
أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى۔
फिर क्या उनकी चेतना और मार्गदर्शन के लिए ये पर्याप्त न था कि वे देखते कि हम उनसे पहले कितने लोगों को विनष्ट कर चुके हैं जिनकी बस्तियों में अब वे चलते फिरते हैं। निसंदेह बुद्धिमानों के लिए इसमें बहुत सी निशानियां और पाठ हैं, और यदि आपके पालनहार की ओर से पहले ही उनके लिए एक बात व परंपरा निश्चित न हो गई होती और एक अवधि निर्धारित न की जा चुकी होती तो अवश्य ही ईश्वर का दंड उनके लिए आवश्यक हो जाता।
यह आयतें पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काल के काफिरों व अनेक ईश्वरवादियों के बारे में है जो अपनी यमन की यात्राओं के दौरान आद जाति की उजड़ी हुई बस्तियों में और शाम या वर्तमान सीरिया की यात्रा में समूद जाति के उजड़े हुए नगर तथा लूत जाति के खंडहर बन चुके घरों को देखते थे, किंतु फिर भी पाठ नहीं सीखते थे और अपने कुफ्र एवं हठधर्मी पर अड़े रहते थे, जबकि वे उजड़े हुए घर और बस्तियां उन्हें भी तथा आज के लोगों को भी अपनी बेजबानी से चेतावनी देती हैं तथा कुफ्र, बुराई व अत्याचार के परिणाम का उल्लेख करती हैं।
आगे चलकर आयतें कहती हैं कि ईश्वर की परंपरा यह है कि वो काफिरों को समय व मोहलत देता है ताकि शायद वे अपनी शैली को छोड़कर सही मार्ग पर आ जाएं। इसके अतिरिक्त हर जाति के लिए ईश्वर ने एक समय निर्धारित कर रखा है और उस समय से पहले वो उसे दंडित नहीं करता।
इन आयतों से हमने सीखा कि जो व्यक्ति अतीत के लोगों के इतिहास से पाठ न ले वो धिक्कारे जाने योग्य है।
अधिकतर लोग केवल उनके मनोरंजक आयाम पर ध्यान देते हैं और उनसे पाठ सीखने की ओर से निश्चेत रहते हैं।
पापियों और अत्याचारियों को ईश्वरीय दंड में विलंब पर घमंडी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर मोहलत या अवधि समाप्त हो जाने के बाद अपराधियों को अवश्य ही दंडित करता है।
आइए अब सूरह ताहा की 130वीं आयत की तिलावत सुने।
فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى।
तो हे पैगंबर, जो कुछ वे कहते हैं उस पर धैर्य से काम लीजिए और सूर्य उदय से पहले और सूर्य के डूबने से पहले अपने पालनहार का गुणगान कीजिए और रात की घड़ियों में भी तथा दिन के कुछ समय में भी ईश्वर का गुणगान कीजिए ताकि आप प्रसन्न हो जाएं।
यह आयत मक्के के अनेकेश्वरवादियों द्वारा पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अनादर किए जाने और उन पर आरोप लगाए जाने के उत्तर में पैगंबर इस्लाम को संबोधित करते हुए कहती है कि इस प्रकार के कटाक्षों को सहन कीजिए और इस बात की आशा न रखिए कि ईश्वर उन्हें तत्काल दंडित करेगा। अलबत्ता मनोबल के लिए आवश्यक है कि दिन रात के कुछ निर्धारित भागों में ईश्वर की उपासना और प्रार्थना करें ताकि ईश्वर से आपका संबंध और अधिक सुदृढ़ हो। इस स्थिति में विरोधियों का व्यवहार पैगंबरी और दायित्व के निर्वाह में आपको तनिक भी प्रभावित नहीं करेगा और आप निराश नहीं होंगे, बल्कि ईश्वर की दया व कृपा के प्रति अधिक आशावान होकर अपने भारी दायित्व के निर्वाह की ओर से प्रसन्न रहेंगे।
इस आयत से हमने सीखा कि ईमान वाले लोगों को विरोधियों की बातों और व्यवहार के संबंध में दृढ़ रहना चाहिए और अपने दायित्वों के पालन की ओर से ढिलाई नहीं करनी चाहिए।
नमाज पढ़ना तथा ईश्वर का गुणगान करना शत्रुओं की अधर्मी और कुप्रचारों के मुकाबले में भावनाओं के सुदृढ़ होने का कारण है।
रात केवल आराम और सोने के लिए नहीं है, बल्कि उसका एक भाग नमाज और ईश्वर से प्रार्थना के लिए विशेष करना चाहिए।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पुरानेश्वरी चमत्कार, जिसे लेकर उपस्थित हैं हमारे साथी हसन अब्बास और जहरा जैदिया। प्रस्तुत है कार्यक्रम आज कल।
आज कल दोस्तों, आजकल में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम हथियारों के क्षेत्र में ईरान की महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे। कायम रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए। कई दशकों तक जमीनी युद्ध के मैदान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हथियारों में से एक टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां हैं, जिनकी पिछली शताब्दी के युद्धों में प्रथम विश्व युद्ध से लेकर अब तक प्रभावी उपस्थिति रही है। लगभग एक सदी तक टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के उपयोग के बिना जमीनी क्षेत्र में युद्ध संभव नहीं था। इस स्थिति के लिए आवश्यक है कि सभी प्रकार की मालवाहक गाड़ियों, टैंकों और बख्तरबंद प्रणालियों से निपटने, इनमें अच्छी बढ़त और श्रेष्ठता हासिल करने तथा जंग के मैदान में अपनी सफलता के झंडे गाड़ने के लिए आवश्यक हथियारों की व्यवस्था की जाए। सभी प्रकार के बख्तरबंद उपकरणों से निपटने और इस क्षेत्र में सापेक्ष श्रेष्ठता हासिल करने के लिए बख्तरबंद युद्ध के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है, उसने एंटी टैंक तोपों के उत्पादन से लेकर एंटी आर्मर रॉकेट और एंटी आर्मर मिसाइलों के क्षेत्र में विभिन्न उपायों को जन्म दिया है। पिछले कुछ दशकों में एंटी आर्मर मिसाइलों के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस क्षेत्र में कई गतिविधियाँ की गई हैं।
ٹینکوں اور بختر بند اپکرنوں کی باڈی کو مضبوط کرنے کے ساتھ ہی ساتھ ان اپکرنوں پر سکریہ رکشا پرنالیوں کو استھاپت کرنے سے ٹینکوں کو نشٹ کرنے کے لیے پارمپرک اینٹی آرمر میزائلوں کے اپیوگ نے دھیرے دھیرے اپنی پربھاوشیلتا کھو دی اور دھیرے دھیرے نئی پیڑھی نے اینٹی آرمر شیتر میں پرویش کیا جو وار ہیڈز والی میزائلیں ہیں۔ یہ میزائلیں ادھک مضبوط تھیں اور انہیں لمبی دوری سے بھی چلایا جا سکتا تھا۔ इस संबंध में ईरान के सशस्त्र बलों के रक्षा उद्योग और आत्मनिर्भर जिहाद संगठन ने जमीनी हथियारों के निर्माण और स्थानीयकरण के लिए देश की वर्तमान जरूरतों तथा असमान युद्धों के अनुसार विभिन्न प्रकार के बॉडी निरोधक हथियारों का डिजाइन और उनका उत्पादन किया। उन्हें सशस्त्र बलों को प्रदान किया जिनका उपयोग विभिन्न आयामों से किया जाता है। विभिन्न प्रकार के एंटी आर्मर हथियारों विशेष रूप से एंटी टैंक मिसाइलों के उत्पादन पर ध्यान पवित्र प्रतिरक्षा काल से ही शुरू हो गया था। उस समय सभी प्रकार के टैंक पैदल सेना के बख्तरबंद लड़ाकू वाहन और सभी प्रकार की बख्तरबंद गाड़ियां इराक के पास थीं। इराकी व बासी सेना के व्यापक उपयोग के कारण इसका मुकाबला किए जाने की आवश्यकता थी। युद्ध की शुरुआत में ईरानी सैनिकों के पास केवल दो मिसाइलें टाव और ड्रैगन थीं जिन्हें पहलवी शासन के दौरान अमेरिका से खरीदा गया था। इन मिसाइलों ने सैन्य क्षेत्र के डिजाइनरों और विशेषज्ञों के एंटीबॉडी के डिजाइन चरण में प्रवेश करने का कारण बना दिया। इस अवधि में इराकी बास आर्मी से ली गई एंटी आर्मर मिसाइलें मॉल्यूटिका एंटी आर्मर मिसाइलों की तरह जो सोवियत संघ से ली गई थीं NB रिवर्स इंजीनियरिंग में अप्रभावी थीं। मालियूतिका मिसाइल जो सोवियत संघ द्वारा बनाई गई थी इराक द्वारा ईरान पर थोपे गए युद्ध के दौरान इराक की बासी सेना के कब्जे में थी। कई अभियानों के दौरान ईरानी जियालों ने उन्हें अपने नियंत्रण में ले लिया था जो आगे चलकर घरेलू मॉडल के निर्माण का आधार बन गई। रिवर्स इंजीनियरिंग द्वारा इस हथियार के उत्पादन के बाद जिसके कारण रॉड जैसे एंटी आर्मर मिसाइलों का उत्पादन हुआ ईरानी नमूनों के डिजाइन और उत्पादन की प्रक्रिया शुरू हो गई। इराक द्वारा ईरान पर थोपे गए युद्ध के बाद के वर्षों में सशस्त्र बलों के लड़ाकू संगठन में कॉर्नेट और कॉनकॉर्ड जैसी नई मिसाइलें जोड़ी गईं जो मानव पोर्टेबल थीं, इसलिए टाव मिसाइलों की तुलना में बेहतर सामरिक क्षमताओं से संपन्न थीं। देश के रक्षा उद्योग के विशेषज्ञों ने देश के अंदर इन दो मिसाइलों का उत्पादन करने का काम किया। सन 2000 के आसपास M113 कॉन्कर्स मिसाइल से प्रेरित टोसन मिसाइल को डिजाइन करने में वे सफल रहे और 2013 में कॉर्नेट मिसाइल से प्रेरित दहलाविया मिसाइल का उत्पादन किया गया। टोनस एंटी आर्मर मिसाइल को रिवर्स इंजीनियरिंग पद्धति का उपयोग करने वाले देश के सशस्त्र बलों से पहले स्वदेशी उत्पादों में से एक माना जाता है। इस हथियार का उपयोग प्रतिक्रियाशील और गैर प्रतिक्रियाशील बॉडी ठोस किलेबंदी और नौसैनिक लक्ष्यों से लैस सभी प्रकार के स्थिर और मोबाइल व अस्थिर बख्तरबंद लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए किया जा सकता है। इस मिसाइल की तकनीक ने कई वर्षों से ईरान के रक्षा चक्र में प्रवेश किया। इसका उपयोग इस्लामी गणतंत्र ईरान के सशस्त्र बलों विशेषकर सशस्त्र सेना की जमीनी सेना विशेष रूप से ईरान के सीमावर्ती क्षेत्रों में किया जाता है। टोसन मिसाइल वास्तव में कॉन्कर्स एंटी आर्मर मिसाइल का एक अनुकूलित संस्करण है, जिसे सोवियत काल में पहली बार डिजाइन और निर्मित किया गया था। टोसन एंटी आर्मर मिसाइल में, जिसे एक उन्नत एंटी आर्मर हथियार माना जाता है, किसी भी खतरे का उचित जवाब देने की अपार तकनीक पाई जाती है। टोन विभिन्न क्षमताओं वाला एक मिसाइल है, जो प्रतिक्रियाशील बॉडी, ठोस किलेबंदी, कम उड़ान वाले हवाई लक्ष्यों और समुद्री लक्ष्यों को नष्ट करने में सक्षम है। इस मिसाइल का मार्गदर्शन भी सेमी ऑटोमेटिक लाइन ऑफ विजन कमांड के जरिए होता है, और मिसाइल फायर के दौरान उपयोगकर्ता को केवल टारगेट को दूरबीन में निशाना साधना होता है। एक दो चरणों वाला वॉरहेड्स, मिसाइल और लॉन्चर का बहुत अधिक विस्तृत न होना, ग्राउंड लॉन्चर का उपयोग करने की क्षमता या बख्तरबंद वाहनों पर इसे लगाने की तकनीक, जमीन पर तैनात होने पर लॉन्चर की कम ऊंचाई और फायरिंग के लिए लॉन्चर की त्वरित तैयारी इस प्रणाली की विशेषताएं हैं। टोसन मिसाइल का वजन 26.5 किलोग्राम है, जिसमें से 3.2 किलोग्राम वॉरहेड्स है। इसकी सीमा 70 से 4000 मीटर के बीच है। इसके ठोस ईंधन की मदद से इसकी अधिकतम गति 200 मीटर प्रति सेकंड है। लक्ष्य से टकराने की इसकी संभावना 95% तक है। लक्ष्य को गहराई तक भेदने की इसकी दर 670 मिलीमीटर तक है। इस मिसाइल की मारक क्षमता रात में 2500 मीटर तक पहुंच जाती है। ईरान में ये मिसाइल एक स्थिर ग्राउंड लॉन्चर के साथ इस्तेमाल होने के अलावा सफीर सामरिक वाहन और बुर्राक और BMP-2 बख्तरबंद जैसे उपकरणों पर स्थापित किया गया है। टोसन रॉकेट लॉन्चर की संरचना ऐसी है कि उपयोगकर्ता को रॉकेट युक्त लॉन्चर की तुलना में कम ऊंचाई पर रखा जाता है, जिसके परिणाम में सबसे पहले वो अपने ठोस ईंधन की आग से कुछ हद तक सुरक्षित रहता है और दुश्मन के फायर से अधिक सुरक्षा के लिए प्राकृतिक या कृत्रिम बाधाओं में छिपने की भी इसमें संभावना पाई जाती है। टोसन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये मिसाइल लॉन्चर से फायरिंग के बाद 75 मीटर की दूरी पर दो वॉरहेड से लैस है और लंबी दूरी पर किसी भी लक्ष्य को नष्ट कर सकता है, क्योंकि इसका गाइडेड सिस्टम सेक्लोस नामक सिस्टम से संपन्न है, जो आंख के अर्ध स्वचालित कमांड से संपन्न है। मिसाइल उपयोगकर्ता फायरिंग के क्षण से लेकर गाइडेंस डिवाइस में टक्कर तक लक्ष्य को अपनी दृष्टि में रखता है। ये डिवाइस मिसाइल को कमांड भेजता है और उसका रास्ता ठीक करता है। गाइडेंस उपकरण मिसाइल को 3 प्रमुख तरीकों से नियंत्रित करता है, जो टोसन मिसाइल के मामले में तार के माध्यम से होता है। इस तरह की मिसाइल गाइडेंस सेमी ऑटोमेटिक और तारों से संपन्न है। इसका नियंत्रण नाक के सिरों के माध्यम से होता है। इस प्रकार के गाइडेड मिसाइल छिपी हुई जगहों से दागना आसान हो जाता है। यही वजह है कि इस गाइडेंस का उपयोग टैंकों और खुफिया ठिकानों जैसे जमीनी लक्ष्यों के खिलाफ किया जाता है। टोसन मिसाइल को विशेष रूप से घुसपैठ, आक्रामक युद्ध और नजरों से बचने के लिए डिजाइन किया गया है। ये पूरी तरह से असमान युद्ध के सिद्धांतों के साथ पूरी तरह से अनुकूल होता है। अगर इस मिसाइल में 2-स्टेज वॉरहेड्स हैं तो इसे 9M और 113M कहा जाता है। टोसन की एक अन्य विशेषता ने इस मिसाइल को BMP-2 आर्मर्ड बख्तरबंद कैरियर और ग्राउंड लॉन्चर से फायर करना संभव बना दिया। बेशक इस लॉन्चर को जीप पर भी लादा जा सकता है और जीप पर लगाया भी जा सकता है। ये मिसाइल नाइट विजन थर्मल कैमरे से लैस हो सकता है। इस मिसाइल की लंबाई लगभग 130 सेंटीमीटर है। इसका व्यास करीब 135 सेंटीमीटर है। इसका वॉरहेड्स टाइप हीट है और इसका फ्यूल टाइप साइलिट टू स्टेज है। हल्कापन, लॉन्चर को आसानी से ले जाने की क्षमता, लक्ष्यों की पहचान करने में गति, तेजी से 360 डिग्री परिवर्तन की संभावना, सभी प्रकार के लक्ष्यों को नष्ट करने की क्षमता, क्लासिक और अनियमित युद्धों में उपयोग की क्षमता, अपेक्षाकृत लंबी दूरी, विश्वसनीय गाइडेंस, हीट बढ़ाने की संभावना, हल्कापन, कार्रवाई की गति, लक्ष्य की पहचान करना, रात में इसे निर्देशित करने और नियंत्रित करने की संभावना, इस मिसाइल की अन्य विशेषताएं हैं जो इसे एक आक्रामक एवं खतरनाक हथियार बना देती हैं। तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय समाप्त होता है, अनुमति दीजिए।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा और अब समय हो चुका है आज के मुख्य समाचारों के सारांश का। इसराइल ने ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी के पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया है। सीरिया में अमरीकी छावनी पर कई रॉकेट हमले हुए हैं, जबकि सेना के पर हुए हमले में कई सैनिक हताहत व घायल हुए हैं। बहरीन में इसराइल की इस साजिश सबके सामने आ गई है और वो जमीनों और घरों को खरीद रहा है। रामलीला मैदान में केंद्र पर विपक्ष का कड़ा हमला हुआ है और केंद्र से सवाल किए हैं कांग्रेस ने। तो दोस्तों, हमें आशा है कि हमारा ये प्रसारण भी आपको सदा की भांति पसंद आया होगा। कार्यक्रमों के बारे में अपने विचारों एवं प्रतिक्रियाओं से हमें अवश्य अवगत कराइएगा। हमारा ईमेल आईडी है hindi@wbs.irib.ir और हमारी वेबसाइट का। तो इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।